तो नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पाटुकर। आज 11 फरवरी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस, और आज इस अवसर पर हमारे साथ गांव आजीविका और हम इसे पर रूबरू होने के लिए उपस्थित है आंचलिक अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्रीमती शिका शर्मा जी। नमस्कार मैडम जी।
नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
मैडम जी। जैसा कि आज 11 फरवरी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस है, तो यह दिवस क्यों और किस लिए मनाया जाता है?
जी जी सर, प्रथम मैं अपने मोबाइल वाणी के समस्त श्रोताओं को 11 फरवरी के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो विशेष दिवस मनाया जा रहा है, उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इसके पश्चात में इसके उद्देश्य क्या कारण है कि हमें महिलाओं या लड़कियों का विज्ञान में क्या महत्व है, उसको बताने के लिए दिवस का सेलिब्रेशन या संचालन किया जा रहा है, तो मैं इस विषय में बताना चाहूंगी कि विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों की भूमिका को पहचानना है, ना केवल लाभार्थियों के रूप में बल्कि एक परिवर्तन के रूप में हमें इसमें लेना है, जिसमें स्वच्छ जल, स्वच्छता और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा, टिकाऊ शहर समुदाय, पर्यावरण के साधन, अन्य जो सारे हमारी प्रगति के मार्ग है, तभी संभव है जब महिलाओं का या लड़कियों का विज्ञान में हम भूमिका निभा पाएंगे और उनको शामिल कर पाएंगे। यह दिवस यूनेस्को या संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं द्वारा संस्थाओं, नागरिकों, समाज लाभ भागीदारों के सहयोग से लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों को प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देना तथा जो लैंगिक समानता है उसको भी हमें बरकरार रखना है। हमें कई बार देखा जाता है कि ऑफिस वगैरह में क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी का बहुत ज्यादा विषय आ जाते हैं, तो हमें उसको देखना है, क्योंकि इसमें जो 2023 की भूमि में थीम है उसमें यही है कि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान प्रौद्योगिकी में शामिल करें और हम सभी अपनी दुनिया की विशाल अपरिक्त प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए उनका हम देखेंगे, महिलाओं का जो महिला वैज्ञानिक है तथा जो हमारी लड़कियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा कक्षाओं में शामिल हो, प्रयोगशाला में शामिल है और जॉब में आने के बाद वो बोर्ड रूम तक पहुंचे, क्योंकि अगर महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण होगा तभी जाके हमारा जो आर्थिक विकास है, देश की जो प्रगति है, सतत विकास के लिए जो 2030 का मुख्य एजेंडा है, हम उसको तभी पा पाएंगे जब महिलाओं और लड़कियों का हमारे विज्ञान में योगदान बना रहेगा, उनकी योग्यता के आधार पे उनको और शामिल किया जाएगा ताकि देश के विकास में महिलाओं का बहुत बहुत योगदान बना रहे।
मैडम जी, जैसा कि कृषि के क्षेत्र में
जी हाँ,
हम शुरू से देखते आ रहे कि पारंपरिक तरीके से खेती होती थी, लेकिन जी आज जी, खेती के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक तरीकों से खेती हो रही है, क्योंकि आप एक अनुसंधान आंतरिक अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा से एक वैज्ञानिक बतौर भी है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में आपके माध्यम से किस तरह ये नवाचार किया जाता है, किस तरह काम किया जाता है।
जी जी सर, हमारे यहाँ जो आंतरिक कृषि अनुसंधान में केंद्र में मुख्य आलू, मक्का और रामतिल का एक अनुसंधान केंद्र है, जिसमें हमने अभी जवाहर मक्का की 2015 जवाहर मक्का 218218 पूसा जवाहर हाइब्रिड मेज 1, पूसा जवाहर हाइब्रिड मेज 2 और जवाहर मेज 10-14, ये जो नई किस्में दी है मध्य प्रदेश के हमारे रीजन के लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी जो है यील्ड आए, है ना, उत्पादकता बढ़े, तो ये हमने अपने किसानों के लिए दी है, एक हमारा ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे क्षेत्र के लिए। दूसरा जो आप जगनी के नाम से जानते होंगे, जगनी रामतिल, इसमें हमारे केंद्र से जवाहर नाइजर 28, जवाहर नाइजर 30, जेएनसी 169 और अभी एक जवाहर नाइजर 111-5 की किस्म आई हुई है, जो हमारे क्षेत्र के वातावरण के अनुसार अनुकूल है और इससे हमको अच्छी उपज प्राप्त होती है। तो हमारे जो श्रोतागण है, अगर आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, तो आप मक्के में हमारे जो अनुशंसित किस्में हैं उन किस्में को अपनाइए, रामतिल की किस्में अपनाइए, जिसमें आपका कम लागत में और अच्छी उपज आपको प्राप्त होगी। साथ ही क्योंकि मैं आलू का अनुसंधान केंद्र से जुड़ी हुई हूँ, तो अभी हम मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं कि आलू की, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र थोड़ा हल्का गर्म क्षेत्र में आता है, तो हम ऐसी किस्मों में काम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग के तौर पर जो यूज की जाती है, चिप्स वगैरह आप देखें, जब बहुत मार्केट है चिप्स का, और जो हमारे क्योंकि थोड़ा गर्म वातावरण, हीट टॉलरेंट, तो कुछ ऐसी किस्मों पे अभी हम काम कर रहे हैं ताकि हम अपने एरिया के लिए कुछ ऐसी किस्में दे सके जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। जैसे अभी कुछ आलू की कुछ नई किस्में आई हुई हैं, जैसे कुफरी नील कट आपने देखा होगा, पर्पल कलर का आलू, नीला टाइप का आलू रहता है थोड़ा। उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत ज्यादा है, आयरन कंटेंट, क्योंकि हमारी महिलाओं को आयरन की बहुत आवश्यकता रहती है। तो इसमें जो कुफरी नीलकंठ की एक किस्म आई हुई है वो खाने से आयरन की कमी दूर होती है। एक कुफरी मणिक है, हमारे यहाँ का बहुत प्रचलित आलू है, जो हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि अपने एरिया में कुफरी लौका जो लाल आलू के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी काफी अच्छी यील्ड है, काफी अच्छा उसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसके बाद आप प्रोसेसिंग जैसे उद्योग से जुड़े हुए हैं आप लोग, साथ साथ छोटे छोटे लघु उद्योग भी अगर करना चाह रहे हैं, तो जैसे कुफरी चिप्सोना की कुछ किस्में है, कुफरी चिप्सोना 1 है 2 है 3 है, फ्राई सोना है, तो ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं आलू की, अगर आप इनको लगाते हैं वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा लगाते हैं, जिस प्रकार से हमारी रिकमेंडेशन या अनुशंसाएं दी जाती हैं, तो आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त कर पाएंगे, ताकि जो महिलाएं गृह कार्य से जुड़ने के साथ साथ कुछ घर में आर्थिक सहायता भी करना चाहती, तो चिप्स जैसे हम बोलते चिप्स बड़ी पापड़ का जो एक व्यवसाय होता है, तो अगर ये भी करें तो उससे वो कभी अच्छा आर्थिक मुनाफा भी कमा सकती हैं।
मैडम जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान समय में
जी हाँ
केंद्र सरकार की जो 9 थीम्स है और 9 थीम्स के अंतर्गत गरीबी मुक्त भारत का, गरीबी मुक्त गांव की जो बात की जा रही है, इसके अंतर्गत आजीविका मिशन काम कर रहा है और आजीविका मिशन से सीधे तौर पर CLF, ग्राम संगठन और स्वसहायता समूह जुड़े, तो आप ग्राम संगठन और स्वसहायता समूह से जुड़े किसान महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी आपके आंचलिक अनुसंधान केंद्र की ओर से आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर?
जी जी, तो मैं अपनी महिला साथियों को यही बताना चाहूंगी कि हमारे पास छोटे छोटे उद्यम हैं जिनको अपनाकर महिलाएं अपनी आजीविका को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आप मत्स्य पालन, जैसे आपने मोती की खेती का भी नवाचार सुना है अपने क्षेत्र में, तो आप मोती की खेती अपना सकते हैं। मोती की खेती के साथ साथ आप मत्स्य पालन का भी स्वरोजगार कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन के साथ किचन गार्डनिंग, क्योंकि आजकल लोग क्या है ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहे हैं, तो आप अपना थोड़ा सा सब्जी बागवानी का ये भी कार्य शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप किसी प्रकार के रसायन ना डालते हुए अगर आप अपनी सब्जी का उत्पादन लेते हैं तो उनको अच्छे रेट में भेज सकते हैं। या आप रोपे तैयार करने का काम कर सकते हैं, विभिन्न सब्जियों के जो रोपे मिलते हैं आप वो रोपे अपने खेत में तैयार करके उसको अच्छे दामों में उचित समय पे उसको विक्रय कर सकते हैं। साथ ही आप अच्छे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा समय चल रहा है प्राकृतिक खेती की ओर हम जा रहे हैं, तो इस समय गाय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो क्योंकि आजकल हम लोग गायों से दूर चले जा रहे हैं, तो हमें वापस से अपनी परंपराओं को अपनाना होगा। देसी गाय की अगर आप पालन करें तो देसी गाय के केवल एक उत्पाद, इसके बहुत सारे उत्पाद है जिसका हम अगर हम उसको प्रॉपरली करें तो उससे हम फायदा मुनाफा अपना सकते हैं, दूध उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद डेयरी उद्योग से आप जुड़ सकते हैं, तो नर्सरी का आप काम कर सकते हैं, रोपे तैयार कर सकते हैं, फूल के या फलों के आप छोटे छोटे पौधे सीडलिंग बनाकर बेच सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कृषि से जुड़े उद्यम है जिसको अपनाकर आप जीविका प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी बहनें, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि केंद्र है, तो और भी जो स्व सहायता समूह बीच बीच में उनको और ट्रेनिंग भी दी जाती है कि और मशरूम उत्पादन के बारे में बताया जा सकता है, मशरूम की खेती करके भी आप नए दिशा में अपने भविष्य को लेके जा सकते हैं।
मैडम जी,
जी हाँ,
कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका वैज्ञानिक दिवस है,
जी हाँ जी,
क्योंकि अभी अगले माह
जी हाँ
कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न होना है, और ये छात्र आगे चलकर वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अपनी प्रगति करेंगे, तो इन छात्रों को आप परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर क्या टिप्स देना चाहूंगे?
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि आगामी माह में हमारे बच्चों की 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होना चाहती हैं, तो मैं उसके लिए उनको यही बताना चाहूंगी, आप एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाकर चलें, आपकी दिनचर्या पूरी व्यवस्थित हो, आपका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा होता है, आप एक टाइम में बहुत सारी चीजें, अपने समय को विभाजित करते हुए चलें, आप समय बनाएं कि इस एक घंटे में मुझे इस विषय को कंप्लीट करना है, अगले थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर दूसरे विषय में कंसेंट करना, तो जो आप टाइम टेबल अपना शेड्यूल करें प्रॉपरली, उसको मेंटेन करके आपके सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए, रिवाइज हो जाए। और एक और महत्वपूर्ण कि आप लिख के जरूर देखें, जैसे बच्चे केवल क्या करते हैं, केवल याद करते हैं किताबों से, तो मैं कहूंगी कि केवल जो हमारे प्रश्न और उत्तर बैठ के हम लोग उसको भी तैयार करें। क्या बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन वहां जाके फिर भूल जाते हैं कि हमें क्या लिखना है, तो प्रश्न और उत्तर वो लिखते चले ताकि अंतिम जो क्षण आएगा उसमें केवल उसको बस आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको वो मेमोरी में याद रहेगा कि हमने इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या लिखना है, तो पॉइंट वाइज उसको मैटर को बनाते चले। और दूसरा है कि संतुलित आहार लें, क्योंकि इस समय आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप मन लगा के पढ़ सकेंगे। भरपूर नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, भरपूर आहार लें, प्रोटीन युक्त कंप्लीट जो बैलेंस डाइट रहती है वो लें। साथ ही थोड़ा सा मैं बच्चों को बोलूंगी थोड़ा मेडिटेशन की तरफ भी जाएं, व्यायाम और ध्यान भी अवश्य करें, क्योंकि आप व्यायाम और जब ध्यान करते हैं तो उससे आपका जो माइंड है वो शार्प होता है, और माइंड शार्प रहेगा तो आप जो भी पढ़ेंगे वो एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे और वो आपको लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में बना रहेगा। तो चीजों को रटे ना, समझते हुए पढ़े, टाइम टेबल बना के पढ़े, संतुलित आहार ले, व्यायाम और ध्यान करते हुए चीजों को पढ़ते चले, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।
मैडम जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न।
जी हाँ।
कि आप आंचलिक अनुसंधान केंद्र से हो और वैज्ञानिक क्षेत्र में काफी दिनों से काम भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से ऐसा कोई नवाचार जिसका प्रतिसाद ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला हो?
सर, नवाचार में हमारे यहाँ क्या जो काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग जो यहाँ पे अपने ट्रेनिंग देते हैं तो उससे जो भी चीजें महिलाएं सीख के जाती है, बड़ी पापड़ का है या सिलाई कढ़ाई का भी चीजें जो कर रही हैं महिलाएं, उससे वो काफी आगे जा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जो भी चीजें सीखते हैं, जो भी चीज सीखते हैं उसको कंटिन्यूटी में रखें, उसको बीच में ब्रेक ना करें
जी।
तो क्या एक बार आप बीच में छोड़ देते हो तो उससे आपको उसको प्रॉफिट समझ में नहीं आता है। तो मेरा तो यही है कि आप जो भी छोटा से छोटा उद्यम से अगर जुड़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यूटी में करें और निराश ना हो। अगर थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा है तो निराश ना हो, उसको करते चलिए, क्योंकि अगर आप एंथुसियास्टिक होकर कोई भी काम करेंगे तो वो निश्चित ही आपको सफलता प्रदान करेगा।
जी, आप थे आंचलिक अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्रीमती शिखा शर्मा जी, जिन्होंने मोबाइल वाणी द्वारा संचालित गांव आजीविका और हम विषय पर आज अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी। मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।
धन्यवाद सर, धन्यवाद।